इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनकी एक प्रार्थना थी, हम नेता की तरह नहीं आएंगे, हम एक भक्त की तरह आएंगे। ये सच में ही एक भक्त है और जगन्नाथ जी का तत्व भी जानती है। जब हम इनसे हमने मुलाकात करी तो इनके अंदर एक भक्त भी देखा है। इनके प्रश्न बड़े ही सुंदर थे और हमने इनको कुछ बातें बोली है, हमें ये पूरी भक्त नजर आ रही है। हमने इनको नेता की तरह नहीं बुलाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम बता दें कि आज देश की स्थिति बड़ी विकट है। कहीं भी शांति नजर नहीं आ रही है। पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे,
जो कागज है ना,
राष्ट्रीय स्तर पे कोशिशें जारी है
नंदन को दे
सुख और शांति की,
और मैं कह दूं
कहीं भी शांति नजर नहीं आती है
तो वो फूल दे।
सरकारें आती तो है शांति का पैगाम लेके, क्योंकि ये शांति के पैगाम भौतिक स्तर पे करे जा रहे हैं, इसीलिए ये शांति नहीं आ सकती है। अमेरिका देश कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन क्या आतंकवाद को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या रोक पाए हैं? ये बढ़ रहा है, वही राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है और वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। भगवान भगवद्गीता में क्या बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्ताम सर्वलोका महेश्वरम सुहित सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षसि। अगर अर्जुन तेरे को शांति की इच्छा है, शांति मृक्षसि तेरी इच्छा है शांति लेने की, तो क्या करना चाहिए? ये भगवान ने भगवद्गीता में आज से 5000 साल पहले कहा है। क्या कहा है? मैं भोगी हूं, अर्थात स्वयं भगवान ही संसार के भोक्ता है, लेकिन हम लोग अपने आप को भोक्ता समझते हैं। एक देश दूसरे देश को भोगना चाहता है, पारिवारिक स्तर पे भी हम एक दूसरे को भोग कर रहे हैं। जब तक हम ये भगवान की वाणी को नहीं सिद्ध करके अपने जीवन को गुजारेंगे, ये पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, ये राष्ट्रीय स्तर पे हमें शांति नहीं मिल सकती। तो कृष्ण ने अर्जुन को यह बोला कि भोक्ता मैं हूं, ये पहला। दूसरा क्या बोलते हैं भगवद्गीता में, भोक्ता रम यत् तपस्याम सर्व लोका महेश्वरम। अरे भाई, भगवान ही सब लोगों के मालिक है। आज हमें एक शरीर मिला जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया, हम अपने आप को भारतीय कह रहे हैं। कुछ समय बाद ये शरीर यहां से पूरा होके चले जाएगा, मर जाएगा, फिर कहां जाएंगे? कहां? हो सकता है कि आज हमारा कोई दूसरा आसपास का देश हमारा दुश्मन है, अगर हम वहीं पे पैदा हो गए। इसलिए कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये जीव और मनुष्य जीवन में आया है। ब्रह्मांड भ्रमे की ये जीवन में हम घूम रहे हैं, कई योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। ऐसे तो कई योनियां हैं, कई मनुष्य भी है, लेकिन ऐसे मनुष्य जिनको सदगुरु की कृपा मिलती है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ऐसे सदगुरु श्रीला पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज आज हमारे बीच में है। पूरे अपने कंधों पे चैतन्य महाप्रभु का भार, पूरे संसार में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार लेके आज इस उम्र में घूम रहे हैं। पूरे संसार में 25 बार भ्रमण कर चुके, कल रात को ही रशिया से आए हैं। ऐसे संत ना उम्र की परवाह, ना परिवार की परवाह करी, इन संतों ने अपने घरों को हमारे लिए ही छोड़ दिया। अगर आज हम इन संतों की वाणी पे अपने जीवन को नहीं चलाएंगे तो हम दुखी होंगे पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये जो शांति का फॉर्मूला कृष्ण ने दिया है ये आत्मा के स्तर पे है। हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर गोरा हो सकता है, ये शरीर काला हो सकता है, ये 84 लाख की योनि में ये आत्मा कहीं भी जा सकती है, ये कौन बताएगा? ये दूसरा पूरा भगवान ने सर्व लोका महेश्वरम, भगवान सबके मालिक है, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो अमेरिका देश है, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही सब लोगों का मालिक हूं। सुहृद सर्वभूता नाम, आपका सबसे अच्छा दोस्त सुहृद, सबसे अच्छा दोस्त स्वयं कृष्ण ही है, अर्थात भगवान ही हमारे शुभ चिंतक है। जब तक हम इन तीन चीजों को नहीं पहचानते, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, शांति कहीं नहीं मिल सकती। सामाजिक स्तर पे क्या हमारे यहाँ पे तरक्की नहीं हुई? क्या हमारे यहाँ पे मेट्रो नहीं बन गई? क्या ट्रैफिक जैम खत्म हो गए? ये मेट्रो आज से 20 साल पहले इंग्लैंड में बन चुकी है, लेकिन वहां पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। क्या यहाँ पे पिछले 20 साल में आती हुई सरकारें और जाती हुई सरकारों ने क्या यहाँ पे अस्पताल के और व्यवस्था करी नहीं? कितने अस्पताल बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या बीमारियों की कमी हुई है? बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये शांति का जो हमने फॉर्मूला बताया इस समाज में नहीं माना जा रहा है। तो आज एक ऐसा मंच हमने तैयार किया है जिसको राम राज्य में हर रोज लगाया जाता था। स्वयं भगवान राम बैठते थे, एक तरफ संत ऋषि मुनि बैठते थे, दूसरे और राजनेता बैठते थे, और सुबह राज्य का काम शुरू तब होता था जब संतों का आशीर्वाद उन राजनेताओं को दिया जाता था। हमें बड़ी खुशी हुई जब हम इन दीदी से मिले, ये स्वयं भजन भी करती है, भक्त भी है। हम चाहते हैं अधिक समय ना लेते हुए हम इनको प्रार्थना करेंगे कि आज दिल्ली के कोने कोने से भक्त लोग आए हुए हैं और कई देशों के भक्त यहाँ पे आए हैं, अमेरिका देश, फ्रांस, जर्मनी, कई देशों के मथुरा वृंदावन से भी भक्त यहाँ पे आए हैं जिन्होंने जीवन भगवान को दिया है। हमारे देश की संस्कृति हम भूल रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य देश के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, ये दुख का विषय है। यहाँ पे शांति नहीं हो सकती जब तक हम नहीं पहचानेंगे। तो पहले तो मैं श्याम रानी दीदी से प्रार्थना करता हूँ कि सुषमा स्वराज जी का स्वागत करें।
परम पूज्य गुरुदेव महाराज परम स्नेही भक्तगण यहाँ विराजे हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री मदन लाल जी कपूर और मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ साथियों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने आज के इस समारोह में मुझे याद किया। राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने का मौका तो अक्सर मिलता रहता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो स्वयं को सुख देते हैं, स्वयं को आनंद देते हैं और एक नई ऊर्जा देते हैं। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम है। जब मुझे आमंत्रण देने आए भक्तगण तो मैंने कहा था कि मैं इस कार्यक्रम में एक भक्तिनी के नाते आऊंगी, एक राजनेत्री के नाते नहीं। इसलिए मैंने तो यहाँ अपनी पार्टी इकाई को सूचित तक नहीं किया कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता भी चल जाता तो मेरे आने का स्वरूप बदल जाता। मैं पूरी विनम्रता के साथ भक्तिभाव को अपने मन में छिपाए हुए समेटे हुए इस कार्यक्रम का आनंद लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्वालिया मठ कृष्ण भक्ति का मठ है और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुदेव पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का संदेश दे रहे हैं। जब हम भक्ति काल के संतों की गणना करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को सबसे अग्रणी पंक्ति में बैठा हुआ पाते हैं। भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है। अपने प्रियतम के नाते भक्त ईश्वर को भजता है, लेकिन जब प्रेम भक्ति में परिवर्तित होता है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। और इसीलिए सूरदास ने जब कृष्ण राधा की लीलाओं का वर्णन किया है तो एक समय ऐसा आता है कि राधा कृष्ण बन जाती है, कृष्ण राधा बन जाती है। राधा मोर मुकुट लगाकर अधरों पर बांसुरी रखकर मनमोहिनी बांसुरी बजाती है और कृष्ण लहंगा पहनकर नृत्य करते हैं। मैं स्वयं कृष्ण उपासिका हूं, मैंने मीरा का वो भाव भी देखा है कि जब भक्ति की पराकाष्ठा में वो कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कृष्ण के जीवन से जो मैंने सीखा है वो ये कि कृष्ण ने जब कोई काम किया अपने आप को उसमें झोंक कर दिया। बालक ने मक्खन खाया तो लेकर खाया, चुरा कर खाया, मिट्टी तोड़ कर खाया, खुद भी खाया, बार बालों को भी खिलाया। कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो ऐसी बांसुरी बजाई गौए भी मदमस हो गई, गोपियां उल्टे वस्त्र धोना पहनकर उस बांसुरी के तान सुनने पहुंच गई। और कृष्ण ने जब नृत्य किया तो ऐसा राज किया कि वो महाराज बन गया। भगवान शंकर स्वयं गोपियों के वस्त्र धारण करके गोपेश्वर महादेव के रूप में उस राज को देख लिया। लेकिन जब वही माखन का खवैया कृष्ण, वो बंसी का बदैया कृष्ण, वो राज का रचैया कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर अर्जुन का सारथी बनकर खड़ा हुआ और उसने वो अनुपम दर्शन लिख डाला जो 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में आज विश्व भर का सबसे बड़ा दर्शन ग्रंथ बन गया। जब वो राजा बनकर द्वारिका भीष्म बने तो उन समान राजा नहीं, जब वो रणक्षेत्र में खड़े हुए तो उन समान योद्धा नहीं, और कोटि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का काम अपने जीवन का दिया। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है ये कृष्ण का जीवन कहता है। लेकिन अगर झाड़ू भी लगाओ तो झोंक कर लगाओ खुद को कि कोने में कोई कूड़ा रह जाए, जीवन चरित्र जिसको एक अनुकरणीय मान करके मैं चल रही हूँ, कृष्ण उपासिका हूँ, इसलिए कहीं भी अगर कृष्ण भक्ति का कोई कार्यक्रम होता है तो खींची चली जाती हूँ। और ये तो भगवान जगन्नाथ के यात्रा का पर्व है। भगवान जगन्नाथ जो कालिया के रूप में जाने जाते हैं, गरीबों के भगवान है, लोग तू कहकर संबोधित करते हैं, गालियां देते हैं, अपनी गुर्बत के लिए उसे कोसते हैं, कालिया रे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने ये मेरा अनर्थ क्यों कर दिया, तूने मेरा काम क्यों बिगाड़ दिया। और वहां कभी आनंद बाजार में जाइए जहां प्रसाद मिलता है, जात टूट जाती है, एक ही हांडी में से ब्राह्मण भी खाता है, हरिजन भी खाता है, हाथ से निकाल कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अजीब मैं से वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेस है पुरी का आनंद बाजार, जगन्नाथ पुरी के मंदिर का। जब नौ हांडी चढ़ती है तो सबसे पहले ऊपर की हांडी का चावल पकता है। जाइए कभी दर्शन करके आइए, अकेला मंदिर है जहाँ कृष्ण अपने बहन और भाई के साथ विराजे हैं। वर्मा या कुंज बिहारी के रूप में अकेले खड़े हैं, धनदानी श्रीमा उनके कंठ में उन्होंने विराजी हैं, या राधा के साथ खड़े हैं, एकाध मंदिर में रुक्मिणी के साथ भी खड़े हैं, लेकिन एक ही मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ बहन सुभद्रा और भैया बलराम के साथ खड़े हैं। ये पर्व अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। धन्यभागी हैं वो लोग जो उस यात्रा का दर्शन करते हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ पूज्य गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस जगन्नाथ यात्रा के पर्व को अपनी आंखों से देख सकूं और यहाँ आकर अपने आराध्य देव की उपासना कर सकूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
अब आप ही समझ लीजिए ये एक भक्त की आवाज थी। जब हम इनसे मिले तो हमें भी ऐसा ही लगा था कि ये हम किसी नेता से नहीं मिल रहे हैं। इनके जगन्नाथ जी के जो भाव थे, इन्होंने हमसे ये पूछा कि ये गोरिया मठ में ये उड़िया भक्त और गोरिया भक्तों में क्या फर्क है। इनके प्रश्न बड़े सुंदर थे। हमने कहा जी हम गोरिया मठ के बारे में तो आपको बता सकते हैं, ये गोरिया मठ का भाव जगन्नाथ जी के लिए ऐसा होता है कि गोरिया मठ वाले चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने थे तो वो इस भाव में थे क्योंकि जगन्नाथ जी के पास बंसरी नहीं थी, और उस गोपी भाव में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आओ आपकी बंसरी और आपकी मोर पंखी भूल गए हो उस ब्रज की, क्योंकि अब आप बड़े रथ में बैठ गए हो और रथ में बैठ के अपने आप को जगत के नाथ बोल रहे हो, कहां हो तुम। तो ऐसे ऐसे इनों के प्रश्न थे जो हमने इनको उत्तर दिए, जो इन्होंने बड़े ध्यान से सुना। और मुझे लगता है कि जब इन्होंने गोरिया मठ का नाम लिया तो मुझे लगा कि वो बातें इनको याद रही है। अब हम चाहेंगे हमारे 5 मिनट के अंदर 10 मिनट में हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी भी आ रहे हैं, उस बीच में अगर हम 5 मिनट का कीर्तन करवा दें और गुरुदेव उससे बात बोलना चाहेंगे।
आगे बोल
हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी आ रहे हैं, वो भी
आ रहे हैं
5-10 मिनट में।
अच्छा
तो कीर्तन करेंगे।
श्याम रानी को 5 मिनट बोल दी।
हमारे बीच में
10 मिनट लग गए।
हमारे गुरुदेव की अग्रगण्य शिष्य श्यामरानी दीदी जी, जिनका प्रताप उनकी पेंटिंग में हमने बड़े बड़े नेताओं को दिया, जिस जिस नेता को हमने दिया उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो कहते हैं कि ये कहां से इतनी सुंदर तस्वीरें दी हैं, ये भाव हमारे गुरुदेव इनके हृदय में डाल रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में, हमारे गुरुदेव के विशिष्ट के बारे में श्यामरानी दीदी हमें कुछ बताएंगी।
मैं
First I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Bhikshu Gurudeva, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pai, Astaravita Sita Sri Srimad, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Bhikshu Gurudeva, Om Vishnu Pai, of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his participation in Rath Yatra. The great light of the deep imports of Rath Yatra could not be revealed to the world. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu began to participate, the world began to know the real reason for Lord Jagannath's appearance. Jagannath, Baladev and Subhadra. Jagannath is actually, ultimately, Rajendranand
himself, the feelings
of love in separation of the gopis to make them happy and also to increase his own feelings of separation.
कौन सा पेंट
यार नहीं आपका भी तो फेस आए ना वो कह रहे हैं जी आप बताएं
की फोटो रे की फोटो
सेवा कौन सी
So Chaitanya Mahaprabhu, who is Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nanayanya.
So he is Krishna, who wanted to taste
love of Shrimad
Radha. And what is it about
him that he should be taking
the
path of Shrimad
Radha?
And what is his pleasure
that he will
experience?
अवर में आने वाले हैं राजस्थान में तो
राजस्थान लोग आ जाए ना तो ये कह देंगे तो हो जाएगा काम
हाँ हमारा काम वृंदावन में एक छोटा सा आश्रम वो मैं करवाता हूँ बात हाँ उनसे बातचीत करके
इनकी बड़ी अच्छी वो है राज विद्या सिंधिया इसकी बड़ी अच्छी सहेली है
इसकी
सहेली है जो चीफ मिनिस्टर राजस्थान है विजय राज सिंधिया
तो ये थोड़ी सी कह देंगे तो वृंदावन में हमारा काम हो जाएगा
मैं बात करूँगा
रामचंद्र जी के पास में वो कागज
ये जो महाराज जी मल्होत्रा जी आ रहे हैं ये हर कोने पे इनकी फोटो है इस वक्त दिल्ली का वो आ रहे हैं इनके पीछे दिल्ली पड़ी हुई है इस वक्त ये चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं डेढ़ महीने के अंदर ये चीफ मिनिस्टर हैं और ये दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर थे 50 साल पहले वो ही थे और ये सकते टॉप के बीजेपी के हैं दिल्ली में सारा टिकट देते हैं एमएलए
एक जो थे मिनिस्टर चीफ वो तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके थे
चीफ मिनिस्टर कौन हाँ मदन लाल खुराना
खुराना
वो चला गया ये सबसे स्ट्रॉन्ग है ये दोनों बराबर से
आ जाए तो अच्छा है दिल्ली
5 मिनट में
अब
लोग जा रहे हैं
इफ यू वांट टू कम बैक टू वृंदावन देन यू हैव टू टेक बैक योर पीकॉक फेदर एंड योर फ्लूट एंड यू हैव टू गिव अप द आइडिया दैट यू आर द सन ऑफ मदर Mother Devaki and Vasudev. You have to remember that you are the son of Yashoda.
Hare Krishna.
आप भक्त लोग बैठे रहिए 5-10 मिनट में हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी आ रहे हैं, आप रुकिए नहीं, प्रसाद अभी आधा घंटा बाद चलेगा, आप भक्त बैठे रहिए।
आप मुझे बोले दिन आदिपुर हम लोग चले जाते
अष्टम
कंपनी हो चुकी है, कोई
वो कहाँ है
उनका देखना पड़ेगा उनको,
करके वो भी
दोनों
Have the charity of my heart and bring me to the mood of the servants of Srimati Radhika so that I can serve you there in Goloka Vrindavan. So Srila Gurudev is the supreme representative in this world of Lord Jagannath, Baladev, who is the complete embodiment of Guru Tattva, and Srimati Subhadra, who is Maha 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 Lakshmi.
हम रुक जाएंगे
क्योंकि वो तो आने वाला। अच्छा आप रुक जाओगे रास्ते में?
मैं रुकूंगा।
So we're all very fortunate to have this divine presence who Krishna personally sent from his abode of Goloka Vrindavan.
चल खेते से चलो।
बोलेंगे
तो फिर आप
बीच में
बोलेंगे। बोलेंगे।
आप
रुकूंगा मैं,
अभी आप बोलेंगे फिर रुक जाएंगे बीच में कि आप शुरू भी।
मैं तो चाहता था जो सुषमा स्वराज भी हमारा भाषण सुनकर।
महाराज जी वो बहुत बिजी लोग हैं, बहुत बिजी हैं, इतना भी रुक गए बहुत है।
मैं पहले तो बताया था, आप बोलते थे रुकती है रुकती है, आप बोलते
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदानय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्रथम मैं पहले अपने परमाराध्य तप नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादशोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलेगा, जिसमें श्री कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रथ में बैठ करके चलेंगे। कुरुक्षेत्र से जा रहे हैं या द्वारकापुरी से जा रहे हैं वृंदावन को। यों तो बहुत सी कथाएं हैं जिनमें जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, उसमें मैं दो एक को थोड़ा सा टच करके छू करके मैं बतलाऊंगा। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, वे मध्य प्रदेश में अवंती नगरी में रहते थे। वे विश्व के एकमात्र चक्रवर्ती राजा थे। एक समय बहुत से तीर्थ यात्रा करने वाले यात्री वहां पर उपस्थित हुए और परस्पर में कह रहे थे कि हम लोग नील माधव जी का दर्शन करके आ रहे हैं, वहाँ जो दर्शन करने जाएंगे आगे ठीक बंद कर दो किचन आ जा रहे हैं। तो नील माधव का जो दर्शन करने जाता है या इच्छा भी करता है वहाँ जाने के लिए, तो वो बैकुंठ में जाता है। इस प्रकार से
उन्होंने बड़ी तपस्या की, किंतु नील माधव जी अपने नील माधव स्वरूप में नहीं आकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में आए। इसके बाद की कथा हम पीछे बतलाएंगे। अभी हमारे आदरणीय मल्होत्रा जी पधार रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी आए हैं, ये गुरुदेव जी का स्वागत करेंगे। आज
जगन्नाथ जी का प्रणाम करो।
जगन्नाथ जी को हमारे राज खुराना जी नगर पार्षद उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जो मल्होत्रा जी के साथ आए हैं। और हमारे
मैं 5 मिनट में जाना चाहता हूँ, तो फिर
हमारे आज कह रहे थे मैं 5 मिनट में जाना चाहता हूँ। हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी का चित्र लगा हुआ है। हमारे गेट के बाहर, हमारे गेट के बाहर एक ऐसा बैग है, अगर किसी का है तो आप ले लीजिए, क्योंकि पुलिस से उसको दूर दूर पे किसी को आने नहीं दे रहे हैं। वो बैग किसका है, अगर किसी का है घूम गया तो वो बैग ले लीजिए, गेट के बाहर ही है। हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से मदन लाल जी कपूर मल्होत्रा जी का स्वागत करेंगे। हमारे आने वाले दिल्ली के बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले मुख्यमंत्री, और मैंने सुना कि दिल्ली के सबसे पहले मुख्यमंत्री भी आप ही थे। 1966 में भी सबसे पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के हमारे मल्होत्रा जी ही थे। इनका बड़ा भक्ति भाव है। हमारी वेणु गीत की जो तस्वीर जब हमने इनको दी तो बहुत सुंदर इनके मुख से निकल के रहा, और उन्होंने हमें एकदम बोल दिया कि हम पक्का आएंगे। हालांकि पूरी मीडिया अखबार इनके पीछे आजकल लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। हम सब बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे देवेश गुप्ता जी प्रधान, वो भी मल्होत्रा जी का स्वागत कर देंगे। गणपत लाल जी और बंसल जी, सुरेंद्र बंसल जी, आज का मंच नेता का मंच नहीं, हमारे गुरुदेव का मंच है। और हम ये जानते हैं कि सुख शांति का मार्ग जब तक संतों की वाणी नहीं सुनी जाती, देश में सुख शांति आ नहीं सकती है। हमारे देश के जितने भी नेता हैं इस बात को मानते हैं, जब तक हम अपने सनातन धर्म भगवद गीता का प्रचार पूर्व नहीं बढ़ाएंगे, हमारे संसार में सुख शांति नहीं हो सकती। अरे भाई, अमेरिका देश में भी तो ऐसे उग्रवाद हो गया, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ये उग्रवाद फैल रहा है, तो देश की क्या बात करें। हम चाहेंगे समय की कमी के कारण हमारे मल्होत्रा जी के मुख से कुछ चंद शब्द हमारे इस रथ यात्रा के लिए, हमारे दिल्ली के कई कोनों से आए हुए भक्त लोग कृष्ण की भक्ति करते हुए, विश्व के कई कोनों से, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के जगह जगह से आए हुए हमारे भक्तगण यहाँ पे आए हैं। हम चाहेंगे कि अगली बार हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में ही देखेंगे, और आप जरूर यही भक्तों का स्वागत करने आएंगे।
Okay. गुरुदेव जी दिल्ली के कोने कोने से और भारत के और विदेश से भी आए हुए भक्तजन इस जगन्नाथ रथ यात्रा के सभी प्रबंधकर्ता जो उन्होंने इस करोलबाग के क्षेत्र से इस रथ यात्रा का यहाँ पर प्रयास किया है, मैं उनके प्रति बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। भगवान कृष्ण के अनेक रूप हैं, उनका बाल रूप है, उनका रासलीला का रूप है, उनका माखन चोर का रूप है, गीता का संदेश देने का रूप है और उसके साथ ही महाभारत के प्रणेता और योग के अद्भुत विलक्षण आचार्य का रूप भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है हम सब जानते हैं। और इसलिए प्रारंभ में बाल गोपाल फिर राधा वल्लभ राधा कृष्ण इस रूप में उनकी पूजा प्राय करके की जाती है। जब जन्माष्टमी का त्यौहार होता है इसी रूप में सब जगह पर उनकी पूजा का लक्षण होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण बलभद्र बलराम जी और सुभद्रा जी इनके विग्रह इसका एक ही रूप एक ही बार है और वो जगन्नाथ में फ्री में वहाँ पर होता है। सारे हिंदू समाज का करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज के मानने वाले उस रूप में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के रूप में देश भर में इसको निकाला जाता है। मुझे बहुत ही इस बात को देखकर प्रसन्नता भी हुई कि दिल्ली में ये हमारे जो इस्कॉन मंदिर है वो भी रथ यात्रा निकालने का काम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर और भी अनेक जगह पर उड़िया संप्रदाय के लोग हैं वो यहाँ सफदरजंग इनक्लेव वहाँ पर इसका आयोजन करते हैं। करोलबाग में भी इस रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही लाभप्रद बात है और मैं श्री गुरु जी के चरणों में अपना आशीष झुकाते हुए इस रथ यात्रा का यहाँ पर जो हुआ और यहाँ के सब लोगों को उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। नहीं तो जो पूरी में रथ यात्रा निकलती है लाखों लोग आते रथ खींचते और वहाँ पर तो सारे हिंदुस्तान से लोग इकट्ठा होते ही, परंतु सूक्ष्म रूप में यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन बहुत ही भव्य है, बहुत अच्छा है। मुझे इसके लिए यहाँ पर आने के लिए बुलाया गया उसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और श्री गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम विजय कुमार मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और अब हम चाहेंगे क्योंकि उन्होंने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा है, संतों का आशीर्वाद उनकी वाणी होता है, 5-10 मिनट के लिए अगर आप हमारे संत की वाणी अगर सुनते हैं तो जरूर ही आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है। और हम चाहेंगे इसी रूप में आप अगले साल भी गुरुदेव के जरूर आशीर्वाद लेने आएंगे, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो इसीलिए अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गुरुदेव जी को कहूंगा कि आप इन भक्त समाज को अपना संदेश दे दीजिए।
इनको 5 मिनट 2 मिनट में जाना है,
ठीक है आप जाइए।
समय की कमी करने के कारण हमारे मल्होत्रा जी हमारे बीच ज्यादा देर नहीं मिल पाए हैं, तो हम चाहेंगे कि गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए वो जाएंगे।
बाद में करा लो 5-10 मिनट बाद बोल लेते। अभी जा रहे हैं,
कोई बात नहीं,
साथ लेके आ गए कार्यक्रम में,
ठीक है।
महाप्रभु जी के जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के प्रकट के संबंध में एक दूसरा इतिहास है जो श्रीमद् भागवत के आधार पर वर्णित किया गया है। किसी समय में प्रयाग में साधु संतों का, ऋषि महर्षियों का एक सत्र चल रहा था। उसमें ऋषियों ने नारद से कहा कि हम लोग कृष्ण के सबसे उत्तम जो भक्त हैं उनको खोज निकालिए। नारद जी अवमस्तु कह करके चल पड़े, ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर जी के पास में गए, बोले जे आप ही जगत में कृष्ण के परम भक्त हैं, न कि जे नहीं प्रहलाद हमसे श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी के पास में गए, उन्होंने कहा जी हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। हनुमान ने कहा जी पांडव लोग जिनके साथ में खाते पीते हैं, जिनका रथ ढोते हैं, जिनके सेवा का कार्य करते हैं, वो पांडव लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। पांडवों के पास में गए, पांडव कहे नहीं नहीं मैं सबसे श्रेष्ठ, हम लोग भक्त नहीं है, हमसे अधिक भक्त द्वारका के ज्यादा लोग हैं और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ उद्धव जी हैं। उद्धव महाराज जी के पास में गए, उद्धव जी ने कहा जे नहीं हम तो गोपियों की शरण रेणु की वंदना करते हैं। आशा बहु चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमत गुल मुलौषधी नाम, जब दुष्ट जन सजन आर्य पतंच हित्वा भेजे मुकुंद पदमिंग सुतिभे मृमिज्ञा। मैं तो वृंदावन में एक गुल्म, एक छोटा सा पौधा हो जाना चाहता हूँ, जहाँ पर कि गोपियों की चरण रेणु से मैं अभिषिक्त होता रहूं। और आगे फिर बोले जिनको श्रुतियां आज तक खोती करके भी नहीं पा सकी, वो परम पुरुष ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र जी गोपियों की मुट्ठी में खेलते हैं, जैसा नचाते हैं नचाती हैं वैसा नचाती हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रियम पाद रेणु अभिक्षण सह जासंग हरि कथोद्गार पुनाति भवन त्रयम। ओहो नंद की ब्रज की गोपियां रमणियां परम धन्य है जिनके विरह कथा में ऐसी कृष्ण की कथाएं निकली जो त्रिभुवन आज तक धन्य हो रहा है, ऐसा प्रेम कहीं नहीं दिखा जाता है। इतने में राजभवन में रुक्मिणी के भवन में 16108 कृष्ण की रानियां एकत्रित हुई थी। उन्होंने रोहिणी मैया से कहा जे रोहिणी मैया ब्रज की गोपियां ब्रजवासी लोग नंद बाबा यशोदा जी को सब समय कृष्ण स्मरण करते हैं, क्यों? दूसरी बात, कभी कभी कृष्ण सोते हुए हमारा अंचल पकड़ करके कहते हैं कि अरे यशोदा मैया तू कहाँ है, नंद बाबा आप कहाँ हैं, हे ललिते हे विशाखे कहाँ हो, और हमारा अंचल पकड़ कर कहते हैं कि हे राधे तुम कहाँ हो, तुम्हारा तुम हमारे जीवन के जीवन सर्वस्व हो। क्यों इतना कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं कि सब समय वहीं पर चिंता करते हैं। हम यहाँ पर एक से एक सुंदरी रूपवती गुणवती नारियां हैं, किंतु कृष्ण को वशीभूत नहीं कर पाती। और ये गोपियां जंगल वन में रहने वाली, ओ गुंजा माला पहनने वाली, फूलों से श्रृंगार करने वाली, और कृष्ण उनके इतने वशीभूत हो गए। तो रोहिणी मैया ने कहा जो ठीक है, मैं इसका उत्तर देती हूँ। उन्होंने सुभद्रा जी से कहा जो द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी मत आना देना, यहाँ तक कृष्ण और बलदेव भी आए तो उनको मत आने देना, वहीं पर रोक देना, और तुम भी भीतर मत आना। सुभद्रा जी ने कहा जी ठीक है। इधर रोहिणी मैया यशोदा जी कैसे कृष्ण के लिए अपना प्राण देती थी, प्राणों की पुतली, आंखों की पुतली जैसा उनको स्नेह करती थी। उदुखन लीला, कृष्ण को उन्होंने ओखल में बांध दिए और उनके प्रेम के मारे लठिया हाथ में लेकर के बोलती हैं कि मारू। और सुप्रीम ब्रह्मा, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, सब ईश्वरों के ईश्वर स्वयं भगवान कृष्ण रोने लगे कि मैया तुम मुझे मत मार। भगवत्ता उनकी कहां गुम हो गई। और ये तो इनकी बात है, नंद बाबा अपना खड़ाऊ कहते थे, जाओ कृष्ण कन्हैया मेरी खड़ाऊ लाओ, सिर पर रख करके खड़ाऊ ले आते थे। इस तरह से गोपियां कैसी थी। कृष्ण कहते हैं न पारे हम निरवद्ध संयुजां, कृष्ण कहते हैं कि गोपियों तुम लोगों ने हमारे लिए घर बार स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति घर छोड़ करके मेरे लिए भिखारी बन गई, पथ की भिखारी मेरे लिए, और मैं तो किसी भक्त को छोड़ नहीं सकता। कोई आधुनिक हो चाहे पुराने हो, चाहे द्वारका के भक्त हो चाहे मथुरा के, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, जहाँ मुझे पुकारते हैं वहाँ जाना पड़ता है। किंतु तुम लोग एकनिष्ठ हो, संपूर्ण रूप से हमको दे दिया है, इसलिए तुम्हारा ऋण हम नहीं उतार सकते। यदि मैं कहूँ कि तुम बतलाओ गोपियाँ तुम भाई क्या इच्छा है पूर्ण करूँ, तो वो कहेंगे कि बस आपकी सेवा दीजिए, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हमको जरूरत। इस तरह से जबकि कथा कहने लगी और भी गोपियों के साथ में कृष्ण की रासलीला इत्यादि का वर्णन करने लगी, तो द्वार पर सुभद्रा जी खड़ी हैं। इतने में कृष्ण राजसभा से चले, क्यों, जहां पर भगवान की कथा होती है वहीं पर वो झट पहुंच जाते हैं, एक मिनट का विलंब नहीं करते हैं। कृष्ण और बलदेव जी राजसभा छोड़ करके दौड़े आए और भीतर में जाना चाहा, सुभद्रा देवी ने उनको रोक दिया, भैया अभी नहीं जाना है, रुक्मिणी मैया जी हमारी रोहिणी मैया जी ब्रज की लीला कथाएं रानियों को बतला रही हैं, उन्होंने मुझको यहाँ पर रख दिया है पहरेदार, आप नहीं जा सकते। कृष्ण बलदेव और सुभद्रा वहीं से कान लगा करके उन कथाओं को सुनने लगे और सुनते सुनते ऐसे द्रवित हो गए जैसे अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखते हैं। हाथ पैर उनके गल गए, मुखारविंद गल गया, और इस प्रकार से ऐसे ही रूप में हो गए। इसके बाद में जब वो लीला कथा बंद हो गई तब नारद जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान कृष्णचंद्र जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी रूप में कहीं भी भारतवर्ष में आप प्रकट रहें, तब कृष्ण ने कहा कि मैं नीलाचल में जगन्नाथपुरी में प्रकृति इसी रूप में रहूंगा। ये भगवान का द्रवित रूप ये कृष्ण जगन्नाथ जी बलदेव और सुभद्रा जी का। ऐसी लीलाएं क्यों होती हैं जगत में, कारण क्या है? भगवान कभी कभी अपने स्वयं आते हैं और कभी राम नृसिंह कल्कि बामन इत्यादि के रूप में आते हैं, जगन्नाथ देव के रूप में आते हैं कृष्ण। किंतु स्वयं भगवान कृष्ण ही बंसीधर मुरली मनोहर द्विभुज नराकार मूर्ति ये कृष्ण है। जीव और कृष्ण दो हैं, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। मुक्ति होने पर भी जीव ब्रह्म में मिलकर के एक नहीं होता। ब्रह्म भगवान का रूप है, कृष्ण रूप, और उनमें सभी प्रकार के गुण हैं, निर्गुण इत्यादि नहीं है, निराकार निरंजन इत्यादि नहीं है। भगवान कभी भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। अभी सुषमा स्वराज जी बोल करके गई, भक्त भगवान बन जाता है, यह बात गलत है। भक्त कभी भी कोटि कोटि जन्मों में साधन में भी भगवान नहीं बन सकता, इसलिए वो भक्त ही रहेगा और भगवान की सेवा करेगा, यही मूल है। इसलिए जगन्नाथ जी कृष्ण ही लीला करने के लिए जगन्नाथ बलदेव जी के रूप में आए, और ये जगन्नाथ हैं। मंदिर में रहते हैं किंतु वर्ष में एक दिन कुरुक्षेत्र या द्वारका से लक्ष्मी देवी को बहाना बना करके रथ पर यात्रा करके वृंदावन में आते हैं। गोपियां उनको रथ पर चढ़ा करके और रथ खींचती हुई ले जा रही हैं वृंदावन में। यद्यपि यहाँ पर आपसे मिलना द्वारकापुरी में कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ है, चैत्र महीने की वही रातियां हैं, मिलन सुख भी वही है, किंतु मेरा मन वृंदावन के कदम्ब वृक्ष की छैया में रहने वाले पुष्प लताओं से और जमुना जी का स्पर्श करके वो जोल जो शीतल मंद सुगंधित हो गया है, वहीं पर निर्जन में मिलने से ही मुझे आनंद होगा, दूसरी बात नहीं होगा। इसलिए कृष्ण राजी हो गए और कृष्ण को रथ में बैठा करके ले आ रही हैं। ये हम लोग विश्व में इन कथाओं का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं। वेदों में लिखा गया मां तमसा ज्योतिर्गमय, प्रकाश की तरफ में चलो, अंधकार की तरफ में नहीं। अंधकार क्या है? अंधकार है यह संसार में आना जाना पुनरागमन का, इसमें बुढ़ापा इत्यादि का रोग इत्यादि का दुख है। मरते समय इस शरीर को छोड़ करके न जाने कहाँ जाना पड़ेगा, रोहिणी नंदन जी ने यह सब बतलाया। इसलिए मनुष्य जीवन में दुर्लभ मनुष्य जन्म पा करके भगवान का भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए भगवान भी आते हैं, उनके भक्त भी आते हैं, वो राम नृसिंह रूप में आते हैं। इतना कह करके मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौ प्रणाम।